अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूं, तुमसे क्या समझ लो।
एक बच्चा अपने दादाजी को देखता है, वो गीता पढ़ रहे हैं और दादाजी से पूछता है, ये आप क्यों रोज रोज गीता पढ़ते हो? और वो बच्चा ये भी कहता है कि आपने मुझे भी पढ़ने के लिए कहा और मैं भी पढ़ता हूं, पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। कितनी बार पढ़ा और भूल गया, और जो चीज याद ही नहीं रहती उसको पढ़ने से फायदा क्या? क्यों हम अपना समय गवाए? पढ़ रहे हैं ना समझ में आता है, केवल पढ़ते और ना ही कुछ याद रहता है। तो उस बच्चे को दादा कहते हैं, तुम एक काम करो, उनके घर में एक टोकरा होता है जिसमें पहले बहुत सारा कोयला रखा होता है और अभी वो काला काला है। तो दादा कहते हैं, हमारे घर के बाजू में जो नदी बहती है, तुम जाओ और इस टोकरे में नदी का पानी भर ले आओ। तो लड़का, स्कूल का बच्चा, जाता है, टोकरे को पानी में डुबोता है और आते आते सारा पानी बह जाता है। लकड़ी का वो टोकरा है। वो बच्चा कहता है कि पानी तो सारा बह गया। दादा कहते हैं, तुम ठीक से नहीं लाए, फिर से जाओ। वो बच्चा फिर जाता है, फिर से पानी में डूबोता है और जैसे ऊपर करता है पानी झरना चालू करता है और आते आते पानी पूरा खत्म। वो कहता है, पानी तो पूरा चला गया। दादा कहते हैं, तुम बहुत धीरे धीरे आए इसलिए ऐसा हुआ, तेजी से आओ तो नहीं होगा। तो कहते हैं ठीक है, फिर तेजी से भाग कर जाता है, उस टोकरे को डुबोता है, ऊपर करता है और तब उसकी समझ में आता है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो असंभव है, मैं कितना भी तेज जाऊं ये काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें तो पानी छेद ही छेद है, पानी सारा नीचे चला जाता है, ये पानी भरने के लिए है ही नहीं। और दादा के पास आता है, कहता है, ये कौन सा आपने काम दे दिया मुझे, ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। दादा कहते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ तो हुआ है जो तुम देख नहीं पा रहे हो। पहले वो टोकरा काला काला था, पानी में डुबो डुबो के क्या हो गया, साफ हो गया, स्वच्छ हो गया। भले उसने कुछ भी धारण नहीं किया, उसने कुछ भी अपने अंदर समाया नहीं, ना ही वो इस काम में आया कि टोकरे का पानी उधर का पानी इधर आता, परंतु फिर भी सफाई तो हो गई। उसी तरह ये जो ज्ञान की पुस्तक है, चाहे समझ में आए या ना आए, चाहे कुछ धारणा हो रही है या नहीं हो रही, चाहे कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, फिर भी करते रहना, करते रहना, करते रहना, तो क्या हो जाएगा, एक दिन धीरे धीरे सफाई होनी चालू होगी। दरारें पड़ी है मुकद्दर में, रिपेयर की आवश्यकता है, मरम्मत की आवश्यकता है, और वो मरम्मत होगी सुनने से, ज्ञान में स्वयं को डुबोने से। इतने समय से तो सुन रहे मुरलिया, कुछ होता नहीं, होता तो कुछ नहीं है, परंतु उस माशूक के रजिस्टर में हाजिरी तो लग रही है, हाँ के चलो कुछ भी नहीं कर रहे, परंतु हाजिरी तो लग रही है। इसलिए सुनते रहना है, समझते रहना है, जब तक जीना है तब तक, क्योंकि ये परमात्मा आदेश है, परमात्मा श्रीमत है। सारी श्रीमत को समझते रहना, सारी मर्यादाओं को जानते रहना, कितना हम कर पा रहे हैं वो दूसरी बात है, पर हमारा नाम कम से कम उन लोगों में तो आएगा जिन्होंने कोशिश बहुत की थी, गिलहरी ने क्या किया था राम जी के पुल में? छोटे छोटे कंकड़ डाले थे, बंदर बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, पर उसका भी नाम का गायन है कि उसने भी उस पुल बनाने में सहयोग दिया था, उस सेतु बनाने में। तो परमात्मा यज्ञ में जो थोड़ा भी सहायक बन जाए उसका बहुत बड़ा भाग्य है। और सहायक हम तब तक नहीं बनते जब तक उसका महत्व नहीं समझता, और महत्व तब तक नहीं समझता जब तक उस ज्ञान को नहीं समझते। तो इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने हमको श्रीमत दी है, रेखा बताई है, लक्ष्मण रेखा खींची, इसके पार ना जाना। पार गए तो कौन खड़ा है? रावण खड़ा है अपने प्लेन के साथ, किडनैप, हाईजैक, अशोक वाटिका से शोक वाटिका और फिर दुख। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी कौन सी श्रीमत है, ऐसी कौन सी मर्यादा है, ऐसे कौन से रूल्स है? यह संस्था 4-in-1 है। पहला संस्था है ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने नियम होते हैं, रूल्स। दूसरा ये यज्ञ है, दूसरा ये यज्ञ है। यज्ञ में बड़ी विधि पूर्वक हर कार्य करते हैं, ये डालेंगे वो डालेंगे। तीसरा ये परिवार है, ईश्वरीय परिवार, और इस परिवार के कायदे कानून है। इस परिवार का मुखिया स्वयं भगवान है, सरबरा, परिवार का सरबरा स्वयं भगवान। चौथा ये पाठशाला है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, कुछ भी कहो, और किसी भी स्कूल में, किसी भी पाठशाला, किसी भी यूनिवर्सिटी के रूल्स होते हैं। तो इस ईश्वरीय संस्था के भी, यूनिवर्सिटी के भी कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ मर्यादाएं हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। ऐसी 26 मर्यादाएं, 26 मर्यादा। बैठे बैठे ही सोचना है, चिंतन करना है, सुनते सुनते ही यही बैठे बैठे प्रतिज्ञा कर लेनी है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं और अब मुझे करना है, ये मुझसे नहीं हो रहा है इसलिए अब मुझे करना है। नियमों का उल्लंघन बार बार करते रहेंगे तो फिर अंदर दुख होगा, उदासी होगी, एक भाव रहेगा कि हमने भगवान की आज्ञा को नहीं माना। आदेश है भगवान का, हुक्म है उसका, हुक्म चला रहा है, हुक्मी, ना फरमा बरदार नहीं बनना है। भगवान का दरबार पहला नियम, पहली मर्यादा, अमृत वेला। बार बार अमृत वेला मिस, बार बार अमृत वेला लेट, बार बार अमृत वेला में नींद, बार बार अमृत वेला कमजोर, सारी दिनचर्या कमजोर। एक दिन अमृत वेला मिस हुआ, दूसरे दिन फिर मिस हुआ, कई दिनों तक, कई सप्ताह, कई मास, और फिर केवल नाम मात्र ज्ञान में चल रहे, श्वेत वस्त्र है, बैच है, पर भगवान से बहुत दूर है। सबसे पहला काम तो ये करना है, जब तक अमृत वेला शक्तिशाली नहीं, जीवन मुश्किलों से घिरा रहेगा, प्रश्न ही प्रश्न रहेंगे जिनका कोई उत्तर नहीं है किसी के पास भी, किस किस को क्या क्या पूछे, जिसको भी पूछेंगे वो जो उत्तर देगा उसमें से 10 नए प्रश्न खड़े होंगे, जिसके लिए प्रश्न पूछे नहीं जाते, प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए, प्रश्न ही खत्म। और प्रश्न खत्म करने की विधि है अमृत वेला, क्योंकि भगवान सभी उत्तरों का सागर है, वो प्रश्नों से पार ले जाने वाला है। प्रश्न रहेगा ही नहीं, प्रश्न ही खत्म हो जाए। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, आप पहले बताओ भगवान है कि नहीं है, जीवन क्या है, पुनर्जन्म है कि नहीं है, ढेर सारे प्रश्न लेकर आता है, कर्म के सिद्धांत क्या है, परम ये स्वर्ग है कि नहीं है, ये देवता होते कि नहीं होते, ढेर सारे प्रश्न। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं तुझे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पर मेरी एक शर्त। वो कहता है ये प्रश्न मैं कितने सालों से कितनों को पूछ रहा हूं, कोई उत्तर नहीं दे पाया, मुझे हर शर्त मंजूर है। महात्मा बुद्ध कहते हैं तुम्हें मेरे साथ रहना होगा एक साल तक, और कोई भी प्रश्न नहीं पूछना, और बराबर एक साल के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पर एक साल तक चुप रहना, मौन रहना। तब तक एक बूढ़ा भिक्षु पीछे खड़ा रहता है, वो कहता है अभी पूछ लो, मैं भी तुम्हारी तरह आया था, आज 30 साल हो गए, इन्होंने कहा था चुपचाप रहो एक साल तक, मैं भी चुपचाप रह गया और बाद में तो प्रश्न ही खत्म हो गए, तुम गलती मत करना, क्योंकि प्रश्न ही खत्म हो गए, अब रहे ही नहीं, प्रश्नों से पार हो गई आत्मा। और इस तरह पार होने की विधि है अमृत वेला, क्योंकि हम प्रश्न का उत्तर जो खोज रहे हैं वो हमारे जिद की ही अवस्था है, हमें उत्तर चाहिए, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मेरी ही बेटी के साथ, मेरे ही बेटे के साथ, मेरे ही पति के साथ, मेरी ही पत्नी के साथ ऐसा क्यों, ये ऐसी असाध्य बीमारी क्यों, इसने क्या पाप किया था, ढेर सारे प्रश्न जिनके कोई उत्तर नहीं है। जितने प्रश्न पूछो उतने और प्रश्न बढ़ते जाते हैं। अमृत वेला नियमित कर देना, और सुबह भी सुनाया अमृत वेला, जल्दी उठने की विधि क्या है, जल्दी सोना, 10 बजे तक समेट लेना है सब कुछ, ज्यादा से ज्यादा 10:30, उससे अगर आगे जाते हैं तो फिर अमृत वेला प्रभावित होगा। और रोज अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे ब्राह्मण जीवन में रस खत्म हो जाता है, मुरली में बैठते हैं परंतु इच्छा नहीं है कुछ, उठते भी है अमृत वेला, बैठे काम पूरा हुआ सो गए, फिर उठे, फिर मुरली क्लास, फिर ऑफिस, थकान, कोई उमंग उत्साह नहीं। अमृत वेला शक्तिशाली योग की स्थिति, भगवान से मिलन हो जाए। बाबा ने कई बार कहा है, बाबा के प्यार में प्रेम के आंसू बह जाए, ऐसा अमृत वेला। दर्द होना चाहिए अगर ऊपर नीचे होता है तो। एक भक्त था, सुबह सुबह उठता था रोज 5 बजे, भगवान की आराधना करता था। एक दिन देरी हो जाती है, उठता है तो देखता है 6 बज गया, सारे दिन भर रोता है, हे प्रभु हे प्रभु, ऐसे कैसे हो गया, इतने दिन की मेरी साधना तपस्या, मेरा नियम था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हे प्रभु, आंसू बहाता है सारे दिन भर। भक्त है, कोई ब्राह्मण होता तो कहता है ठीक है अपना ही बाप है, या किसी दूसरों के पास जाके अपना दुखड़ा सुनाता जो थोड़ा अच्छा पुरुषार्थी है, और उसको कहता है कि भाई मेरा आज अमृत वेला मिस होता है, हो गया। वो कहेगा कोई बात नहीं, मेरा भी होते रहता है बीच बीच में, तो होगा, अभी संपन्न कहां बने। और वैसे तो पूरा अमृत वेला संगम योगी अमृत वेला है, कभी भी उठे अमृत वेला तो है ही ना, सृष्टि के हिसाब से तो ऐसे ढेर सारे कारण। बहुत कम है जो रोते हैं आज मिस हो गया। दूसरे दिन 4 बजे उस भक्त को आवाज आती है, उठो जागो। वो खुश होता है, भगवान स्वयं मुझे उठाने आया। वो कहता है कौन? आवाज कहती है मैं शैतान हूं। शैतान तुम कैसे आ गया? वो कहता है कल मैंने तुम्हें 6 बजे तक सुलाया था पर तुमने जो दिन भर रोया, अगर तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं, इसलिए मैं खुद ही आ गया हूं आज तुमको उठाने। काल्पनिक कहानियां हैं पर भाव मिस ना हो, ये प्रथम श्रीमत है। ये गई तो सब गया। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के अमृत वेला, सुबह सुबह गाड़ी को पटरी पर डाल दो अपने आप चलेगी। जिसका रोज ही अमृत वेला मिस हो रहा है, रोज 5 बजे उठ रहे, 6 बजे उठ रहे, 7 बजे उठ रहे, कोई कोई 8 बजे उठने वाले भी होंगे। मम्मा का नियम था 2 बजे उठने का, एक बार देरी हो गई, कोई सेवा थी, कार्यक्रम था, 11 बज गए, मेहमान आए थे। फिर भी उस दिन भी मम्मा बराबर 2 बजे उठी। भाई बहनों ने कहा मम्मा लेट हो गया था ना, तो लेट उठना चाहिए कम से कम उस दिन। मम्मा ने कहा एक श्रीमत तो पहले ही तोड़ दी मैंने, दूसरी भी तोड़ क्या, जो मेरा नियम है वो है बस। भारत के चीफ जस्टिस कृष्णा अय्यर मधुबन में आते थे 80s में, अभी अभी उनकी उन्होंने शरीर छोड़ा 2-3 साल पहले। 100 साल से भी ज्यादा जिए, 84 बुक्स से भी ज्यादा किताबें लिखी है लॉ पर। वो इंद्रप्रस्थ में आते थे, पांडव भवन में मधुबन में रुकते थे। उनका नियम था सुबह 2 बजे उठना, इसलिए 9 बजे सो जाते थे। और जब भी कार्यक्रम होते थे हम लोगों के ब्रह्मा कुमारी इसके, वो बीच में से उठ के जाते थे, कहते थे मुझे माफ कर दो, मुझे जल्दी उठना है। सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम नाइट में होते थे, वो कहते थे मैं नहीं रुक सकता। एक लौकिक व्यक्ति जिसे लौकिक कार्य करना है, सुबह सुबह 2 बजे उठ के अपनी लौ की किताबें लिखते थे, पढ़ते थे, वो अपने नियम का इतना पक्का है। और हम ठीक है, रात में थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है, बाबा को भी तो पता है ना, बुखार तो लग ही रहा है, तो बाबा को तो पता है। कोई कहे टेम्परेचर देखो, नहीं नहीं मत देखो, नहीं रहा तो मुश्किल हो जाएगी और ज्यादा। वैसे ही ठीक है, लग रहा है ना बस, इसलिए हम लेट उठेंगे। कमजोर संकल्प वैसा ही कर्म, शक्तिशाली संकल्प वैसा ही परिणाम। शरीर का कोई लेना देना नहीं है, यहां संकल्प का लेना देना है। संकल्प से कर्म निर्माण होते हैं। तो सबसे पहला नियम, सबसे पहली मर्यादा, सबसे पहली श्रीमत, अमृत वेले को ठीक ठाक करना है। जिन्होंने अमृत वेले की किताब नहीं पढ़ी है वो आज से ही या कल से पढ़ना चालू करेंगे। पूरा एक मास सब किताबें छोड़कर बस एक अमृत वेला ही पढ़ो। जब तक अमृत वेला पक्का नहीं हो जाता है पूरी तरह से, जब तक वो संस्कार नहीं बन जाता, आदत नहीं बन जाती। कुछ दिनों पहले मुरली थी, सुबह सुबह उठने की आदत डाल, कुछ दिनों पहले उसी मुरली में था, विचार सागर मंथन करने की आदत डाल, खुशी में रहेंगे। अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, अमृत वेला स्वयं को परमात्मा प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार आकर्षित नहीं करेगा, फिर कोई का प्यार नहीं खींचेगा। नहीं तो प्यार खींचते रहता है, आत्मा की प्यास प्यार की है, सुबह कहा था मिलन की, दूसरी प्यास उसे प्यार चाहिए। और भगवान का प्यार जब उसे नहीं मिलता है तो वो देहधारियों के प्यार के पीछे पागल होता है, भागता है, प्यार दे दो, प्यार दे दो, प्यार दे दो, मेरी कोई केयर करे, मेरे तरफ कोई ध्यान दे। कोई ध्यान ही नहीं रहता हमारी तरफ, हमारा कोई महत्व है कि नहीं, और फिर बीमार पड़ते, ताकि सब लोग देखे, ध्यान दे, अटेंशन सीखेंगे। दूसरा नियम ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य अर्थात केवल काम विकार नहीं, ब्रह्माचर्य, संपूर्ण पवित्रता। पर ब्रह्मचर्य की नींव है काम जीत बनना, और पवित्रता की नींव है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हटा दो पवित्रता गिर जाएगी। पवित्रता तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत विस्तार है पवित्रता का, पर उसका आधार ब्रह्मचर्य है। काले हो गए, रोज मुरलियों में आता है काम चिता पर बैठकर। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, एक जन्म पवित्र बनो। ब्राह्मण जीवन में अपवित्रता अर्थात सफेद कागज पर काला दाग। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2003, चित्र देखा है ना बाबा का, सेंटरों पर लगा हुआ है कई सारे, धर्मराज का रूप। बाबा हमसे थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है, सुनो, कान खोल के सुनो। पढ़े ना माँ बाप के, बाबा के माँ बाप के कई जगह पर लगे हुए हैं। इस ब्रह्मा ने जो सहन किया, किस लिए सहन किया? पवित्रता। माताओं को पर कितने अत्याचार हुए, कितना उनको मारा गया, पीटा गया, मांस जबरदस्ती खिलाया गया, किस लिए? प्यूरिटी भंग करने के लिए। ब्रह्मा ने इतनी गालियां खाई किस लिए? प्यूरिटी के लिए। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा हम क्या करें, माँ बाप जबरदस्ती करते हैं शादी कर। बाप कहते हैं, बाप की याद में सिर भी कट जाए तो उच्च पद पाओगे पर नरक में मत जाना। जो ऑलरेडी हो गए हैं, चले गए हैं उसमें, वही तो उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे। तो जो कुमार है, जो कुमारी है, जो पवित्र है, उन्हें तो उसमें जाना ही नहीं, नरक है नरक, जीता जागता नरक। और जो जा चुके हैं और उसमें है, अब उनको कमल समान रहना है, अनटच्ड। अनुभव ले लिया है ना, क्या मिला? बर्बादी, दुख, सारी शक्तियां नष्ट कर देता है काम। एक हंसी की बात है, शायद सब ने देखा होगा वो वीडियो, 1 मिनट का है, जिसमें एक भाई बर्तन साफ कर रहा है और वीडियो में उसको पूछा जाता है, आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आपको अपनी सारी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ गुजारना है, ऑप्शन बी। वो कहता है आई चूज ऑप्शन बी, बी 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 बी। अभी सुधाया नहीं उसको क्या, वो कहता है आई चूज ऑप्शन बी। बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान है। एक बार गए कि निकलना मुश्किल है उसमें से, इच्छाएं चालू होगी, फंसते जाते हैं प्रपंच में, संसार में, व्यवहार में, कुमार कुमारी अर्थात स्वतंत्र मुक्त निर्बंधन। तो चाहे कुमार कुमारिया हो या अधर कुमार अधर कुमारिया हो, कोई भी हो, ये नियम सबके लिए, सब कौन है? भाई बहन है, बस ये एक ही नाता है। ये कहना ये मेरी पत्नी है, ये भी तो बंधन है। ये मेरा पति है, ये कहना भी तो बंधन है। इसलिए बाबा ने इस यज्ञ में एक ही नियम बनाया सबके लिए, बस सब आत्माएं हैं भाई भाई और सब भाई बहन है, और कोई संबंध नहीं। दुनिया वाले गलत कहते हैं जब वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले भाई बहन बनाते हैं, उनको कहना ऐसा नहीं है, हम लोग भाई बहन नहीं, हम भाई भाई बनाते हैं, ऐसे बोल देना, सब आत्माएं हैं। तो गलती से भी ये संकल्प नहीं करना, ये तो बहुत स्थूल बात हो गई, सूक्ष्म तो उससे बहुत कड़ी है। देह देखना, देही का आकर्षण, देह के भोग, देह का आकर्षण, देह का स्पर्श अपवित्रता है, शरीर में गंदगी भरी है। क्या हाथ लगा है इसको, क्या है इस चमड़ी के पीछे? तुलसीदास कैसे पागल था अपनी पत्नी के पीछे, दुकान में रहता था, 10 बार अंदर जाके मिल के आता था पत्नी से, दुकान बाहर घर अंदर, पत्नी मायके चली गई तो बेचैन हो उठा, पागल हो गया। अंधेरी रात, कड़कती बिजली, वो नदी पार कर गया एक मुर्दे पर सवार होकर, ऐसा कामांध था। पत्नी ऊपर रहती है, सांप लटका हुआ है, लगा रस्सी है उसको पकड़ के ऊपर चला गया। पत्नी ने कहा, सब लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, इतना प्यार तुमको मेरे शरीर से, अगर इतना ही प्यार राम से किया होता तो तर गए होते, बस तीर लग गया। अब उसके पत्नी का उसको शरीर नहीं, हड्डी मांस का पिंजर कंकाल नजर आता है और वैराग्य उदय होता है, शरीर से वैराग आ जाए। वैराग की दो परिभाषाएं हैं, पहला संसार सार, दूसरा शरीर मिट्टी, ब्रह्मचर्य, तीसरा नियम सेंटर एटमॉस्फियर, सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली हो, और यह जिम्मेदारी हमारी है, हम जिम्मेवार हैं, रहने वाले भी और बाहर से आने वाले भी, भाई बहने भी। सेंटर में आकर संसार की चर्चा करना, न्यूज की चर्चा करना, पॉलिटिकल चर्चा करना, राजनीति की चर्चा, बिजनेस की चर्चा, पैसों की लेन देन। एक सेंटर पर एक भाई बता रहा था, हम क्या करें, कुछ भाई ऐसे हैं मुरली क्लास होते ही बैठते हैं क्लासरूम में और राजनीति की चर्चा चालू कर देते हैं, रोज का है नियम, बोझ है, वायुमंडल शक्तिशाली नहीं बना रहे, दूषित कर रहे। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है कि सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है, प्योर बनाना है, पावरफुल बनाना है, ये भी नियम। ऐसे कोई विचार, ऐसी कोई बातें, ऐसी चर्चाएं, निंदा, परचिंतन, परदर्शन, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, तीसरा नियम। चौथा नियम ड्रेस मर्यादा, जिसकी कल चर्चा हमने कल विस्तार से की थी, इस्लाम धर्म की भी बात बताई थी, हमारा ड्रेस स्वच्छ हो सके, श्वेत फटा हुआ हो और समुचित ढंग से शरीर को, शरीर ढका हुआ हो, उत्तेजना वाला ना हो, उसे देखकर कोई हमारे देह की तरफ आकर्षित ना हो जाए। मुरलियों में आता है पारसी स्त्रियों की बात, एक ही बार आई है 5 वर्ष में, एक ही मुरली में साकार मुरली। पारसी स्त्रियां जाली लगा लेती है, सुना होगा जो कई समय से मुरलियां सुन रहे, ताकि कोई लट्टू ना हो जाए। हमारा ड्रेस शालीनता हो, उसमें दिव्यता हो, उसमें कोई देखे तो उसको लगे ये देवी है, कोई देखे तो उसके उसको माँ का रूप दिखाई दे उसमें, कोई स्त्री कोई लड़की ये नहीं दिखाई दे, कोई लड़का कोई भाई उसको दिव्यता दिखाई दे। कल की मुरली में था जैसे अवतार अवतरित हुआ है, जैसे शिव शक्ति आया है, वो दिखाई दे। ड्रेस और कम से कम मधुबन जाते हैं तो श्वेत हो, वाइट हो, बैच लगा हो, हम रूहानी मिलिट्री, जब भट्टी में आते हो तो भी वैसा, क्लासरूम में आते हो तो भी वैसा, और जितना हो सके हल्का हो, लाइट, भड़क भड़कीला ना। उसके बाद में अगला अगली मर्यादा इकोनॉमी अर्थात पानी, बिजली, भोजन, डीजल, सबकी इकोनॉमी, हम पर कम से कम खर्च हो। मधुबन में जाते हैं, ढेर सारा भोजन ले लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं, वेस्ट। पानी वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, ये नियम है यज्ञ के। मधुबन में आते हैं, कमरे का फैन चालू और उधर क्लास सुनने बैठे हुए, हर टर्न में वहां पर वो लॉक तोड़ने पड़ते हैं। माता है, लॉक लगा के घर चली जाती है, कमरे में चाबी अपने पास, घर इधर लॉक तोड़ने पड़ते हैं टर्न। भोजन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, वाटर, पानी, पानी वेस्ट करते हैं बहुत सारा यज्ञ का। डीजल, पेट्रोल, जहां पैदल जा सके पैदल जाए। अगला नियम एफ, फूड, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। सबसे पहला, जो भोजन जिस पैसों से कमाया जा रहा है, जो पैसे आ रहा है, वो सफेद शुद्ध हो, किसी का शोषण ना किया हो। दूसरा, अन्न दोष, जाति दोष ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो। तीसरा, राजसिक तामसिक ना हो, सात्विक हो। अगला, वो भोजन याद में बनाया हुआ हो, बनाते समय भोजन बनाने वाले की स्थिति क्या है। अगला, भोग लगाया हुआ हो, अमर्यादित ना हो, स्वाद हेतु केवल खा रहे ये ना हो। प्रश्न एक है कि मैं किस लिए खा रहा हूं, जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं, क्या लक्ष्य है जीवन का। भोजन, और जैसा भोजन वैसा ही मन, वो जितना हल्का और जितना शुद्ध होगा उतनी उतना मस्तिष्क पावरफुल होगा, वो जितना गरिष्ठ होगा उतनी नींद आएगी, उसको पचाने में ही आदि शक्ति तो वहीं चली जाएगी। और प्रेम से स्वीकार किया हुआ, कंप्लेंट के साथ नहीं, संतुष्टता के साथ। मधुबन में आते हैं, वहां पर भी कंप्लेंट चालू हो जाती है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, उसमें नमक कम है, उसमें ये ऐसा है, उसमें वैसा है। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, राजी तेरी रजा में। उसके बाद में जी, जी अर्थात गिव गुड विशेस, ब्लेसिंग्स, लव, शुभ भावना देना, शुभ कामना देना, वरदान आशीर्वाद देना, सबके प्रति कल्याण की भावना। किसी के लिए भी कल की मुरली में था ना, घृणा द्वेष, घृणा और ईर्ष्या, ईर्ष्या घृणा और क्रिटिसिज्म। किससे ईर्ष्या करना अर्थात स्वयं परेशान, दूसरे परेशान। घृणा करना अर्थात स्वयं गिरना, दूसरों को गिराना। क्रिटिसाइज करना अर्थात कोई जा रहा है उसको धक्के दे देना और उसको गिरा देना, और फिर क्या कहना, सॉरी, जानबूझ के षड्यंत्र रचना, बदले कर बदला लेना एक दूसरे से। उसने हमारे साथ ऐसा किया, अब देखते हैं उसको भी, हमें किसी से भी बदला लेना नहीं है। जो कुछ हुआ वो होना ही था। अगला एच, होली कंपनी, सत्संग, जितना हो सके इस संगठन में रहना है, इस परिवार के अंदर रहना है। ये सत्संग है, ईश्वरीय संघ है, इस संघ से बाहर जाते ही विकर्म चालू हो जाते हैं। संसार की इच्छाएं वासनाएं उत्पन्न होगी, ये करूं वो करूं, इसके साथ दोस्ती करूं उसके साथ दोस्ती करूं। ये सत्संग से बाहर जाते आत्मा कमजोर हो जाती है, फिर उसे मनुष्य का सहारा चाहिए, कोई कंधा चाहिए जिस पर वो सिर रखे और रोए, भगवान का सहारा छूट जाता है। सत्संग, ईश्वरीय संग, परिवार का संग, किताबों का संग, क्लासेस का संग, प्रकृति का संग, ऑडियो विजुअल सत्संग, क्या देख रहे हैं मोबाइल में इंटरनेट पर, वो भी एक संग ही है, वो भी कुसंग ही है जिसने संसार को गर्त में गिराया है विकारों के। उसके बाद में अगला आय, आय अर्थात इनकलकेट वर्च्यू, इनकलकेट अर्थात दिव्य गुणों की धारणा। जैसे ज्ञान की भट्टी है, योग की भट्टी है, सेवा की भट्टी है, वैसे चौथी भट्टी है दिव्य गुणों की भट्टी। ये भी भट्टी करनी है, हर हफ्ते के लिए एक गुण निर्धारित करना है कि इस हफ्ते मुझे अनुशासन पर काम करना है, अपने जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है उसको अनुशासित करना है, जीवन जो बिखर गया है उसको फिर से स्थिर करना है। कोई टाइम ही नहीं है कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी कुछ करना, कभी भी किधर घूमने चले जाना, कुछ भी खा लेना, कभी नहीं खाना, कभी सोते ही रहना, कभी सोना ही नहीं, कभी बेचैनी, टाइम टेबल बिखर गया है जीवन का। पहले तो इसको ठीक करो, दिनचर्या सेट करनी है, सबसे पहला काम है फिक्स टाइम कर लो, इतने बजे ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, मुरली क्लास जाना है, उसके बाद में सेवा करनी है, उसके बाद ऑफिस जाना है, इतने बजे आना है, इतना बजे ये करना है, उतने बजे, कभी भी कुछ भी, कभी भी टीवी चालू कर रहे हो और कितना देर भी टीवी देख रहे हो उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी इंटरनेट में घुस रहे हो और कहां से निकल रहे पता ही नहीं, जाना पता है आना पता नहीं, आने का कोई टाइम टेबल नहीं। दिव्य गुणों की भट्टी, इनकलकेट डिवाइन वर्च्यूज, काम करना है। 36 दिव्य गुणों की लिस्ट है ना सबके पास, बुक पे लिखी रहती है कई बार, कोई भी दिव्य गुण लेना है और काम करना है। उसके बाद में जे, जे फॉर जर्नी टू मधुबन, मधुबन में जाना अर्थात तपस्या के लिए जाना है। यहां से लोग मधुबन जाते हैं और वहां क्या करते हैं, क्या करते हैं, शांतिवन के बाहर है एक माया बाजार, उसका नाम क्या है, माया बाजार, जो खरीदी में लग जाते, खरीदारी में, खरीद फरोख्त, तपस्या रहेगी बाजू में, बस वही करते रहते। मधुबन में जाना अर्थात तपस्या के लिए जाना, मधुबन में जाना अर्थात मौन। यहां से लोग जाते हैं बाबा मिलन में और वहां जाके करते क्या है, कुछ और ही करते रहते हैं, परचिंतन, पर दर्शन। बाबा से मिलते तब भी फोन पे बातें चालू रहती है, कई लोग तो भगवान का भोग बाद में अपना भोग पहले निकालते, वहां बैठे बैठे अचानक से सुगंध आती है, सैंडविच पीछे खा रहा है, बाबा की मुरली उधर चालू है, इधर भोजन चालू है, और फिर सेवा केंद्र में आके सुनाते हैं, आहा क्या बाबा से मिलन हुआ, झूठ, अनुभव इतना सस्ता नहीं है। बिना तपस्या के, त्याग और वैराग्य के और प्रभु प्रेम के कोई अनुभव नहीं होता है, कभी कीमत चुकानी पड़ेगी बहुत बड़ी। किसी ने मैसेज भेजा था, सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया पे मिल जाए, तप है सत्य। उसी तरह प्रभु मिलन का अनुभव भी तपस्या चाहिए। यहां से गए वहां जाके कर क्या रहे, कंटिन्यूस बातें करते रहते, घूमते हैं साथ साथ, मंडली घूम बना के, ना भोजन के समय मौन है, ना तपस्या है, ना मुरली के समय ध्यान है, सारा ध्यान फोन पे बात करने में, लौकिक में बात करने में, इधर उधर बात करने में, खरीदी करने में, घूमने फिरने में, आसान होगा। जर्नी टू मधुबन, प्लानिंग करके जाना है, अगली बार जाएंगे तो। उसके बाद एल, एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार, आज की मुरली में सुस्त स्टूडेंट जो है मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो वैराग्य चाहिए, इसको याद करो, उसको याद करो, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। बाबा ने कहा सब मरे पड़े, सच्चा प्यार एक से बस, वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ है, वही संसार है। कितना देहधारियों से प्यार किया, सबने तो धोखा दिया आज तक, कोई है जिसने धोखा नहीं दिया? शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। एक बार लिस्ट बना रहे थे उन रिश्तेदारों की जिन्होंने मुश्किलों के समय मदद की, बस वहीं से शून्य का की खोज हो। किसकी लिस्ट बना रहे थे? उन रिश्तेदारों की जिन्होंने मुसीबत के समय सहयोग दिया, और वहीं से क्या हो गई? शून्य की खोज हुई। जीरो, कोई काम नहीं देगा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, इन आवर ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ नीड वी स्टैंड अलोन। जब हमें किसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उस समय कोई भी हमारे साथ नहीं होता, एक लाचार लोरे, हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही रहते, कोई नहीं रहेगा उस समय जब हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। लव फॉर वन बाप, एक बाप से प्यार, बस सबके साथ रहना है, तोड़ निभाना है। बाहर गृहस्थ अंदर संन्यस्त, वैराग्य। उसके बाद में अगला एम, एम फॉर मुरली चिंतन, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की। रोज की मुरली से टॉपिक्स निकालना, चिंतन करना, मनन करना, इसी में बिजी रहना। बिजी रहेंगे तो क्या होगा? व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो सारे दिन भर इधर उधर के विचार आते रहते हैं। धूल है विचार, मन दर्पण है, दर्पण में धूल जमती रहती है, बस इसके लिए चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन। पॉइंट लेना है ज्ञान का, सोचना है उसके बारे में। ये नहीं कहना इसे होता तो कुछ नहीं, कुछ तो होगा। वो जो काला काला है ना टोकरी में, वो तो निकलेगा जरूर, पानी में डुबो डुबो दे, पानी समा नहीं रहा है उसमें, पर स्वच्छ तो हो रहा है। मुरली चिंतन। उसके बाद में एन, एन अर्थात नो, एक नो की लिस्ट बनानी है, जो मुझे मेरे जीवन में बिल्कुल करनी नहीं है, मैं कर रहा हूं, जो श्रीमद नहीं है, सिनेमा नो, अननेसेसरी सर्फिंग इंटरनेट नो, यूट्यूब की माया नो, जो काम का है घुसे उतना किया, सुना निकल के बाहर आ गया, स्टॉप। चालू कहां से करते हैं, एंड कहां होता है? क्लिक क्लिक, क्लिक। ब्रह्मा कुमार एंड शूद्र कुमार नो, अननेसेसरी शॉपिंग, ये ऑनलाइन परचेस, चीजें रखी हुई है पर आदत इतनी पड़ गई है किसी को, ढूंढते रहते कौन सी चीज आई है, बाय चीजें आती। एक भाई है, मिले थे, ज्ञान में चलते, वो कहते थे मेरी युगल हर हफ्ते में 3-4 चीजें ऑनलाइन परचेस करती है। अभी साड़ी आई है, दूसरी मंगा ली, अभी पहली खोली भी नहीं, दूसरी मंगा ली, आदत पड़ गई, एडिक्शन है वो ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन परचेसिंग, ऑनलाइन न्यूज, न्यूज का एडिक्शन। इस पार्टी ने ये कहा, वो पार्टी क्या कह रही है, अब इसने ये कहा, उसने क्या कहा, इसने ये टिका किया, वो क्या टिप्पणी कर रहा है, न्यूज का एडिक्शन, परचेसिंग का एडिक्शन है, ऑनलाइन गेम्स। गेम्स कौन कौन खेलता है? मोबाइल में गेम्स खेलते होंगे कोई कोई, तो टाइम है 1 घंटा, क्या करें, खोलो कुछ कुछ करते रहते हैं, हमने देखा है ब्राह्मण भी करते हैं, बैठे 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 गेम खेलते रहते हैं, वीडियो गेम्स। अच्छा आप नहीं खेलते होंगे, आपके बच्चे खेलते हैं क्या? उसका क्या करना है? खेलने दो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आतंकवादी टेररिस्ट लोगों का, कुछ टेररिस्ट का इंटरव्यू लिया गया था कुछ समय पहले। उनको पूछा था बचपन में आपको कौन से गेम्स अच्छे लगते थे, उन्होंने कहा था वीडियो गेम्स खेलते थे हम, इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी, इधर से शूट, उधर से शूट, ये बचपन में उनको ये गेम पसंद थे और यही जाके आप आतंकवादी बन गए। बार बार जो बचपन में बंदूक चलाते थे वीडियो गेम्स में, उनको इच्छा हुई हमको बंदूक चाहिए मारने के लिए। वीडियो गेम्स नशा है, नशा स्टॉप करना है एकदम, पागलपन है। बीच में वो कौन सा आया था जिसमें आत्महत्या कर ली थी, ब्लू वेल। बच्चों को क्या समझ, उनको समझाना है, सिखाना है, नहीं तो एडिक्शन है, ये जबरदस्त एडिक्शन है। वही चाहिए बस, बड़े बड़े वीडियो गेम्स खेलते रहते बैठ के, कुछ तो करते रहते हैं उसमें। उनको क्रिएटिविटी सिखानी है, चलो ज्ञान योग में रस नहीं है पर बाकी भी तो संसार में अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छी अच्छी सीखने की चीजें, वो सिखानी है। नहीं तो धीरे धीरे वैसे ही संग मिलेगा, कुसंग में चले जाएंगे और फिर गए। कितनी माताएं हमारे पास आती है, कहती है क्या करे हमारा बेटा जो पहले ज्ञान में चलता था, मधुबन में आता था, सेवा करता था, आज दिन रात दारू पीते रहते हैं। सेंटर पर अनन्य सेवा करने वाले लड़के आज दिन रात डूबा हुआ है दारू के नशे में, क्या करे, कैसे उसको बताए और कैसे निकाले। कुसम हाथ से निकल गया बच्चे। इसलिए बचपन से क्या हम संस्कार दे रहे हैं, किस तरह की तरबियत एजुकेशन दे रहे हैं, किस तरह की शिक्षाएं दे रहे हैं, वो हमको देखकर सीखते हैं। जैसा हम करते वैसा करते हैं, हमारा जीवन डिसिप्लिन्ड हो वो वैसा ही सीखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती उनको ज्ञान में खींच के लाओ, भले ना आए पर एक अच्छा इंसान तो रहे कम से कम, भिखारी तो ना बन जाए, कलंक तो ना बन जाए समाज के लिए। एन नो 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 की लिस्ट बनानी है, वो कल वाले जैसे मत करना। हम बाहर का नहीं खाते, हम अंदर का खाते हैं। हमें तो बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं है, बाहर का निकालो, अंदर अंदर का समोसे का आलू खा रहे हैं। सुविधाजनक श्रीमत, ये तो चॉकलेट है, ये तो आइसक्रीम है, ये तो चलता है ना, ये तो मशीन मेड है। मशीन अपने आप काम करती है क्या? एक कुमार निकला मधुबन के आने के लिए, ट्रेन में था, सुना होगा, उसके कंपार्टमेंट में तीन चार भाई आके बैठे बाहर के और कहा कि आप थोड़ा खाना खाओगे हमारे साथ। उसने कहा नहीं नहीं हम नहीं खा, बाहर का हम नहीं खाते। वो लोगों ने कहा नहीं हमारी मम्मी ने घर पे बनाया हुआ। उसने कहा नहीं नहीं मेरा पेट भरा है, मैं नहीं खाऊंगा, आप खा लो। पक्का कुमार था, भोजन उन्होंने पूरा किया ट्रेन में और फिर कहा अरे कम से कम बिस्किट तो खा लो। इतना प्यार से कह रहे हैं, उसको लगा हम बिस्किट तो खा सकते ना, मशीन मेड, बाबा ने तो कुछ कहा ही नहीं उसके लिए, मशीन क्या है। उसने बिस्किट खा लिया और जब उसकी आंख खुली तो वो अजमेर में था और सारा सामान गायब, ठक थे वो, बिस्किट में कुछ मिला दिया था, किसमें क्या मिलाया हुआ है क्या पता। जो कुछ भी मिलता है मार्केट में मशीन में, उसमें लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, क्या वही होता है सही में? एक मसाले का पैकेट है, उसमें लिखा है ये चीज डाली हुई है, किसने देखा उसमें वो है? किस गारंटी के साथ कह सकते हो उसमें प्याज और लहसुन नहीं है? कह सकते हैं ऐसी टेस्ट आ गई, कुछ भी हो सकता है किसी में। कुछ कुछ मधुबन में भाई है वो खुद ही मसाले बनाते हैं, बहुत अच्छे होममेड। उनके पास लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स, 10 चीजों का मिला के मसाले बनाते हैं घर का ही, बाहर का नहीं लेंगे कुछ भी, कोई भी मसाला बाहर का नहीं, खुद ही घर पे बनाते हैं। तो वो सीखना है। नो नो हम थे एन, उसके बाद में ओ अर्थात ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, श्रीमत जो मिली है उसका यथार्थ पालन करना, उसके साथ तोड़ मरोड़ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना है श्रीमत के साथ, जो कहा है बस कहा है, अपने रीति से उसको मॉडिफाई नहीं करना है। जैसे बाबा ने आर्मी वालों के लिए कहा है, क्या कहा है, डबल रोटी खा सकते हैं, पर आर्मी से रिटायर होके अभी 10 साल हो गए अभी भी खाना चालू है, क्यों, बाबा ने कहा है। बाबा ने उसके लिए नहीं कहा था, तब के लिए कहा था, मुरली को समय स्थान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार समझना है, टाइम प्लेस पर्सन। तो हो उसके बाद में पी, पी का जो पॉइंट है वो भाइयों के लिए, प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, यज्ञ का कोई भी लिटरेचर बहनों से पूछे बिना प्रिंट नहीं करना है, अपनी कोई किताब, कविता की किताब, या कोई प्रोग्राम करना है, खुद ही डिसाइड करना है, यहाँ प्रोग्राम करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे, इतने लोगों को बुलाएंगे, बहनों को कुछ पता ही नहीं, कुछ कुछ भाई बहने भाई ऐसा करते हैं। प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर हमेशा बाबा ने निमित्त बहनों को बनाया, उनके अनुसार ही होना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं चलानी है वहां, इसको हम चीफ गेस्ट बनाएंगे, उसको वो करेंगे और प्रिंट भी कर दिया और दिखा रहे ये है, ऐसा होता कम है पर ध्यान रखना है ये बात। उसके बाद में क्यू, क्यू अर्थात क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस, अर्थात जो भी काम करो वो कैसे करो, क्वालिटी वाला करो, ऊपर ऊपर से नहीं करना है, दिखावे के लिए नहीं करना है, सेवा कहीं बहन जी ने ये करो, बुद्धि सारी घर पे है और फटाफट कैसे तो भी कर लिया और भागे, जो भी काम यज्ञ का हो वो पूरी निष्ठा के साथ करना है। उसके बाद में आर, आर अर्थात रिलेशनशिप, हमारे आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, मिठास होने चाहिए, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, कंपटीशन का एटीट्यूड, रीस नहीं करनी है, मतभेद ना हो, मतभेद भले हो मनभेद ना हो, झगड़ा ना हो, लून पानी ना हो, संस्कार मिलन की रास करनी है। सब अलग अलग लोग हैं, सब अलग अलग जगह से आए हैं, मधुबन में तो हम देखते हैं कितने वैरायटी लोग हो, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, एक ही कमरे में 10 माता, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ ही ये है, एक कमरे में 20 माता एक साथ, 4 दिन के लिए झगड़ा ना हो, ऐसा सबको साथ चलना है, सबके हमारे संबंधों में मिठास हो। और महत्वपूर्ण बात डिटैचमेंट, किसी के इतना समीप चले नहीं जाना है, जितना समीप जाएंगे फिर झगड़े चालू होते हैं, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घृणा उत्पन्न होती है, फिर अवगुण देखने लगते हैं। पहले आए थे किसी को जाना, बहुत अच्छा लगा वो व्यक्ति, उसमें बहुत सारे गुण दिखाई दिए, देवी दिखाई दी, और बाद में पता चला इसमें तो वही है जो हमें है, वही सारे अवगुण, इसके लिए दूरी रहे, डिस्टेंस। मनोविज्ञान में इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, कीप अ डिस्टेंस, वो बहुत अच्छा है, माना बहुत अच्छा है, पर डिस्टेंस। और जिसको हम बहुत मानते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, उससे तो और ज्यादा दूर रहो, उसके नजदीक गए तो अवगुण अगर दिख गया तो गया, फिर इसकी क्लास बहुत अच्छा है, अवगुण देखा ये तो सो रहा था, क्लास डिलीट हटाओ, ये तो भोगी निकला, इसको तो हमने बहुत अच्छा समझा था, थोड़ा दूर रहना सारे इमोशनल डिटैचमेंट। उसके बाद में एस, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत, जितना हो सके सारी दिनचर्या में बीच बीच में मौन का अभ्यास करना है, मौन में बहुत पावर है, शब्द जहां पहुंच नहीं सकते वहां मौन पहुंचता है, आत्मा में शक्ति अभरने चालू हो जाती है। स्थूल मौन की बात कर रहे, महात्मा गांधी ने लिखा है, यंग इंडिया के जो एडिटर थे तब, उन्होंने लिखा जब मैं साउथ अफ्रीका में था एक मठ में गया, एक आश्रम में, और उस आश्रम में नियम था सभी चुप थे, सब मौन। मैं मठाध्यक्ष के पास पहुंचा, हेड जो इंचार्ज थे आश्रम के, उनको पूछा ये कैसा नियम है यहाँ पर, यहाँ सबके सब मौन में है। उन्होंने कहा उस मठाध्यक्ष ने, हम मनुष्य आत्माएं इतनी कमजोर है, हमें ये भी तो नहीं पता कब क्या बोलना, कहाँ क्या बोलना, किसके साथ कैसी बातें करना, और जब भी बोलते गलत ही बोलते, इसलिए हमने इस आश्रम का नियम बनाया कि जो भी यहाँ पर आएगा रहने के लिए उसे जब तक वो यहाँ है मौन व्रत धारण करके रखना है, बस चुप चुप। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। गुरु मौन बैठा है, शिष्य हजारों बैठे हैं, कोई न शिष्य पूछ रहा है न गुरु कुछ बोल रहा है, उसका मौन व्याख्यान है। शिष्यस्तु चिन्ह संशय, शिष्य के संशय अपने आप दूर हो रहे उस मौन से, इतनी पावर है मौन में, इतनी शक्ति है मौन में। चुप हो जाए एकांत में, और मौन अर्थात स्वचिंतन, अपना चिंतन करना, मौन अर्थात परमात्मा चिंतन, मौन अर्थात याद की यात्रा। मुरलियों में आता है सन्नाटा छा जाए, डेड साइलेंस, मुरलियों में आता है सुन हो जाओ, कोई आवाज नहीं, मुरलियों में आता है कर्मातीत अर्थात जैसे मुर्दा, चुप चुप, एकांत और मौन का अभ्यास। उसके बाद में टी, ट्रस्टी, गृहस्थ व्यवहार में रह के ऐसे रहना है जैसे बैंक का मैनेजर, जैसे बैंक का क्लर्क पैसे गिनता है और उसको पता ये पैसे मेरे नहीं है, मेरी सैलरी आएगी बार बार, वैसे हाथों में हजारों आए जाए मेरे कुछ भी नहीं है, सब बाबा का। उसके बाद में यू, यू अर्थात यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल मैनर, ज्ञान जो सुना है उसको यूज करना है, खाली ये भाषण के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए नहीं है, जो सुना आज सुबह ऑनेस्टी, आज प्रैक्टिस करनी है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदार रहना है, नुकसान हुआ तो चलेगा पर ईमानदार रहेंगे। उसके बाद में वी, विजिटिंग अदर सेंटर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर जा रहे हैं, एक लेटर होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, ऐसे नहीं जाना है कि हमको तो सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, कहीं पे भी चले जाए, लेटर लेके जाना है, ये नियम है स्टूडेंट्स के, ये सारे 26 नियम सेंटर निवासी स्टूडेंट्स के नियम है। उसके बाद में डब्लू, डब्लू अर्थात वॉश आफ्टर मोशन, पेट साफ होने के बाद में नहा, ये सब जानते हैं। एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात खुद का एग्जामिनेशन, खुद की जांच करना। एक बीच में रह गया के, कीपिंग चार्ट, चार्ट रखना, के अर्थात कीपिंग चार्ट, तो एक्स अर्थात एक्सरे अर्थात स्व की चेकिंग, चार्ट लिखना अलग, ये चेकिंग अलग, अपने आप को देखते रहना, पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, पहले क्या, कल क्या था, आज क्या है, बार बार चेक करते रहना। वाई अर्थात योगा ट्वाइस अ डे, दो बार ऑफिशियल योग हो, एक अमृत वेला, अमृत वेला नुमा शाम का, कई लोग हैं जो नुमा शाम का योग नहीं करते, इसको ठीक करना है, कम से कम 6:30 से 7:30 या तो 7 से 7:30। कल जैसे यहाँ पर कितना शक्तिशाली योग का वायुमंडल था, शाम को बहने बैठी थी तब, ऐसा रोज अपने घर में शाम का योग करना है, जो हो सके सेंटर पर आके। लास्ट जेड अर्थात जील, जील अर्थात उमंग उत्साह, जो भी कार्य करे उमंग उत्साह के साथ करे। तो ऐसे टोटल 26 नियम है ए से लेकर जेड तक, फिर से रिवाइज करते हैं, ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, डी फॉर ड्रेस, ई फॉर इकोनॉमी, एफ फॉर फूड, जी फॉर गिव, देना, क्या क्या देना है हमको दूसरों को, सहयोग देना, प्रेम देना, मदद देना, शुभ भावना देना, दुआएं देना, सबको दुआएं देनी है, बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा है, सबसे सरल पुरुषार्थ क्या है, दुआएं दो, दुआएं दो, चाहे किसने हमारे साथ कैसा भी किया हो, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे रहा है उसको भला, जो नहीं देता है उसका भी भला, सबका कल्याण है। उसके बाद में जी एच होली कंपनी, जितना हो सके सत्संग में रहना है, और सबसे वर्स्ट बैड कंपनी है ये, इसके अंदर की माया है। एच आई, आई अर्थात इनकलकेट, इनकलकेट अर्थात धारण करना, दिव्य गुण डिवाइन वर्चू। जे अर्थात जर्नी टू मधुबन, के कीपिंग चार्ट, एल लव फॉर एक बाप से प्यार, एम फॉर मुरली चिंतन, एन फॉर नो, ये काम तो सबसे महत्वपूर्ण है, एक लिस्ट बनानी है हर एक ने, नो की लिस्ट, और ऊपर लिखना है, अभी लिख के रखो अपनी डायरी में, अभी लिखना है सबको अपनी डायरी में, बाबा ने मना किया है, क्या लिखना है, बाबा ने मना किया है। ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड, ये कहां से ला लिया, बाबा ने बोला है किसी मुरली में, सब भाई भाई बोला है, लौकिक रिश्तेदार, लौकिकता ला ली है संबंधों में, ब्राह्मण परिवार के संबंधों में लौकिकता, ये मेरा विशेष भाई, विशेष टोली, विशेष राखी, कहां से विशेष, सब विशेष, सभी विशेष है या कोई भी विशेष नहीं है, और किसका क्या भरोसा, राखी बांधने वाला हाथ हाथ पकड़ भी सकता है, संसार विकारी, इसके लिए डिटैचमेंट, अपने भावनाओं की कुंजी किसी के हाथ में नहीं दे देनी, वो उधर से कंट्रोल करेगा, उधर से बटन दबाएगा इधर आंसू, उधर से बटन दबाएगा इधर खुशी, ऐसा चाहिए जीवन, अपना रिमोट अपने जेब में रखना है, जेब नहीं है तो पर्स तो है ना, माथा के पास, पर्स में रखना, उधर नहीं दे देना उसके हाथ में, दबाया खुश, दबाया दुखी, हमारे खुशी के मास्टर स्वामी हम हैं, कोई दूसरा नहीं, छीन लो अपना रिमोट कंट्रोल। आगे कहते हैं, ओ ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, ओ पी प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, क्यू क्वालिटी कंट्रोल, वो हमारा ज्ञान का चित्र है ना, प्रदर्शनी में, ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है तब रोटी बना रही है माता और झगड़ रहे हैं, और जब ज्ञान वाला चित्र है तो पूरी, तो एक माता कैसे समझा रही, एक भाई को, ग्रुप को, देखो ज्ञान में नहीं है रोटी बना रहे, ज्ञान में आगे पूरी तल रहे, चलो आगे नेक्स्ट चित्र, देखा है ना चित्र, सबने देखा है कि नहीं, वो चित्र है, प्रदर्शनी की बुक खोल के देखना, उसमें है, ज्ञान में नहीं है तो रोटी बना रहे और झगड़ रहे, और ज्ञान में आने के बाद वो माता पूरी तल रही है, तो माता कैसे समझाती है, फटाफट टाइम कहाँ है, ज्ञान में नहीं है रोटी, ज्ञान में आगे पूरी, अब आगे नेक्स्ट, देखा है ना चित्र, हाँ हाँ, जीवन सुंदर कैसे बना, कमल पुष्प समान कैसे बना, टाइम का है, फटाफट फटाफट काम चलाना, वो भी सही है, वो भी सही है, एक रीति से बी क्यू, उसके बाद हार, संबंध, संबंध कैसे हो, मधुर और डिटैच्ड, ज्यादा किसी के नजदीक जाने की कोशिश नहीं करना, नजदीक गए झगड़े चालू, जब तक दूर थे तब तक ठीक, दूर ही रहना, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी, ज्यादा किसी के नजदीक जाना ही नहीं, हर एक को स्पेस चाहिए, गिव देम स्पेस, हर एक को प्राइवेसी चाहिए, गिव देम प्राइवेसी, नहीं तो पति समझेगा, पत्नी का मोबाइल रखा हुआ है, वो कहीं गई है, मैसेज आया, देख लिया, क्या मैसेज है, फिर वो आके कहती है, क्या तुमने मेरा मैसेज देखा, देखा? क्या कहेंगे, हाँ देखा पढ़ा था, कहा कुछ नहीं पर मुंह चुप चुप और चली गई। प्राइवेसी में इंटरफियर नहीं करना है किसी के भी, कोई भी हो फिर कोई भी, बिना पूछे किसी की पर्स खोलना, मोबाइल देखना, ईमेल चेक करना, चोरी है सब। अगला एस सॉलिट्यूड साइलेंस, टी ट्रस्टी, यू यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल वे, वी विजिटिंग अदर सेंटर, डब्ल्यू वॉश, एक्स एक्सरे करना है, खुद ही का एक्सरे देखना है, कहां कोई फ्रैक्चर तो नहीं है इमोशंस में, कोई डिसलोकेशन, कोई हड्डी खिसक तो नहीं गई है किसी भावना की। एक्स वाई योगा ट्वाइस डे, और जेड जेड अर्थात उमंग उत्साह। तो एक से लेकर जेड तक ये सब क्या था, मर्यादाएं। तो हमारा जीवन मर्यादा युक्त तो जीवन है, परंतु साथ साथ हमारा जीवन खुशी वाला जीवन भी है। तो सभी योग युक्त होकर बैठेंगे और फिर लास्ट 15 मिनट हम थोड़े प्रश्न उत्तर भी ले लेंगे। ओम शांति।